Parvati Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 18। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय शब्दार्थ आत्मा मन तथा शरीर आत्मज पुत्र तथा पुत्रियां आप्त मित्र तथा संबंधी गृह घर समाज राष्ट्र वित्त धन संपत्ति जनेषु विभिन्न दास तथा सहायक सक्ते आसक्त लोगों के द्वारा दुष्प्रापणाय दुष्प्राप्य गुण संग तीन गुणों के द्वारा विवर्जिताय कलुषित न होने वाले को मुक्त आत्मभिः मुक्त पुरुषों के द्वारा सहृदय अपने हृदय के भीतर परिभाविताय ध्यान किए जाने वाले ज्ञानात्मने समस्त ज्ञान के आगार भगवते भगवान को नमः ईश्वराय परम नियंता को नमस्कार करता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कल्मश से पूर्णतः मुक्त है वे अपने अंतस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसे के लिए दुष्प्राप्य है जो मनोरथ घर संबंधिया मित्र धन नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुण से निष्कलुषित भगवान है। आप सारे ज्ञान के आगार परम नियंता है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं किंतु ये प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। इसकी पृष्टि इस उपनिषद द्वारा होती है, अपाप विद्धम वे कलुषित नहीं होते हैं। इसी तथ्य को यहां पर बताया गया है गुणसंग विवर्जिताय। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं। अल्पज्ञ एवं मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि वे एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। अतः मुक्तात्मा ही भगवान को समझ सकते हैं। मुक्त आत्मा भी सहृदय परिभाविताय, केवल मुक्त आत्मा ही कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। योगी नाम अभि सर्वेशा मदगतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समयुक्त मोमतः। समस्त योगियों में जो योगी दिव्य ब्रह्म भक्ति से मुक्त होकर युक्त होकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है और वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। ओम अज्ञानंत मिरांधस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं मृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भी उपस्थित सभी सज्जन भक्त और मातृवृंद को प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित होने के लिए सबको विशेष स्वागत करते हैं। तो हम लोग कई दिनों से गजेंद्र की स्तुति, गजेंद्र किस प्रकार समर्पण कर रहा है, हम उसके चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे कि गजेंद्र की जिस प्रकार की स्थिति था ये घटना होने के पहले, हम तो किसी प्रकार से इस स्थिति में जा नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वप्न भी नहीं कर सकते। वो जितने बलशाली था, जितने प्रतिपत्तिशाली था, जितने उनके प्रभाव था, पराक्रम था, स्वप्न नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जब घड़ियाल के साथ उनका पला पड़ा तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ही सरेंडर कर लिया। आपने दिखाया, आपने पराक्रम प्रभाव दिखाया, हजारों साल तक लड़ा और उनके जो पत्नियां थी, उनके संबंधियां, पुत्र और सब परिजन थे, वो भी ऐसे नहीं उसको छोड़े, उन्होंने पूरा प्रयास किए होंगे। ऐसे नहीं दो चार घंटा, दो चार साल, 200-300 साल तक भी किए होंगे। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का होते तो एक दिन दो दिन तीन दिन के हाथ खड़ा जाग तुम मरो क्या आशा छोड़ा। लेकिन उन्होंने बहुत लंबा समय तक प्रयास करके आशा छोड़े और गजेंद्र भी अपने बल बूते पर आशा रखा था बहुत लंबा समय तक। लेकिन जब ये सबसे आशा छूट जाता है, मित्र पुत्र परिजन संपत्ति बल वित्त सभी में जब आशा छूट जाता है, बिल्कुल निराशा हो जाते हैं, असहाय हो जाता है, कोई सहायता के नहीं रहता, तब कौन याद आते हैं, तभी याद आते हैं ना, दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरण जब करे, दुख काहे को होए। जब तक स्थिति ना आए तब तक हम चौंकेंगे नहीं, अपने को हम तो कुछ है ना समथिंग, इसे कैसे छोड़ेंगे। तो इसी को गजेंद्र कहते हैं। सबसे पहले आज की स्तुति में, आज का श्लोक देखिए, जो स्तुति चलता है गजेंद्र के, सारे श्लोक के अंत में नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम लोग का हाथ में कुछ है ही नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। केवल एक काम करने के लायक है, क्या? नमस्कार, बस। प्रभु हाथ भर दिए, मुंह दिए, बस यही प्रणाम भर कर सकता हूं, हाथ उठा सकता हूं, जोहार कर सकता हूं। लेकिन हम तो जोहार करते हैं सभी, कम से कम आप लोग भक्तगण हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने का कस्टम थे, भाई प्रणाम करना पड़ेगा, ठुंडा तो खड़ा नहीं होंगे। लेकिन प्रणाम करते समय अनेस्टली आप लोग सोचिए, आप कैसी भाव से प्रणाम करते हैं, आपका मन में क्या चलता है, शरीर में क्या होता है, वाणी में क्या होता है ना नहीं? तो ये गजेंद्र प्रणाम करते हैं, वो दंडवत नहीं कर पाए, पानी के अंदर है, पकड़े हुए हैं, पर जा रहा है, मर रहे हैं, तभी कैसे प्रणाम। हम तो स्थिति में कभी आए नहीं, देखिए स्थिति में कैसे प्रणाम होता है। और केवल कायर नहीं था उनका, कायर तो स्थिति में नहीं था कि दंडवत करे आगे मंदिर के अंदर। अब मन और वाणी ये दोनों से, ये दोनों और इंपोर्टेंट है, काय से मन वाणी और महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग अहंकारी है वो मनवाणी को देखते नहीं, वो काय को देखेंगे कुछ किया कि नहीं। जिसे आता ना एक प्रसंग दक्ष प्रजापति का, भगवान शंकर उनके दामाद थे, उनके छोटी बेटी को शादी किए थे, लेकिन वो आए, वो सब लोग खड़े हो गए, शरीर से सम्मान किए, अंदर में को गाली देता होगा क्या पता, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए। और कई हजारों आदमी खड़े होकर के उनको नमस्कार किए, बहुत खुश हुआ, देखा सारे असेंबली खड़े हो गए, लेकिन नजर पड़ गए एक उसके अंदर नहीं खड़ा हुआ, हजारों में से कोई एक नहीं खड़ा हुआ, तो सारे दिमाग बिगड़ गया। अरे भाई इतने तो सम्मान दिए, इसमें संतुष्ट ना एक नहीं दिया, पूरा मटिया मेट कर दिया, सारे कॉन्फ्रेंस ही खत्म, यज्ञ होने नहीं चला, इतने गुस्सा हो गया उन्होंने। देखिए अहंकार है, हमको कम से कम 90% 99% हमको मिलता है, लेकिन 1% क्यों नहीं हुआ, हम टिक गया उसमें, टिक गया तो बस, इतने खतरनाक गुस्सा क्रोध आकर के सब खराब कर दिया। शंकर जी शरीर से नहीं कर रहे थे, जब सती ने उनको पूछे क्या हो गया पिताजी, आए आप थोड़ा उनको सम्मान नहीं कर सकते थे, उनके पत्नी उनको डांटी शंकर जी को, सती ने, क्या हो गया पापा, आए आप थोड़ा खड़ा नहीं हुए। शंकर जी बोले अरे पगली, हम तो सभी को, तेरे पापा के सभी को सम्मान करते हैं, हमारा लेकिन सम्मान करने का विधि अलग होता, हम ऐसे ढक्कन उठाकर नहीं खड़े, हम वास्तविक प्रणाम करते हैं, प्रणाम जिससे होता है, जो हम है उसके द्वारा प्रणाम करते हैं, जो उसका अंदर ढक्कन के अंदर उसको प्रणाम करते हैं, कवर को क्या करें। लेकिन तेरे पिता तो कवर वाले हैं, कवर में इतने आटा अच्छे, कवर को देखते हैं, हमारा कवर को ही चाहते थे, लेकिन हम तो इसी वजह नहीं, हमारा सम्मान विधिवत होता है, और जिस प्रकार होना चाहिए इस प्रकार करते हैं, हमेशा करते हैं सम्मान, लेकिन आप तेरे पिता से मैं क्या कर सकता हूं, उसे मेरा सम्मान करने का विधि अलग होता है, उनको नहीं जानते, तो सम्मान किया था लेकिन उन्हें आप तो ही होता है, लेकिन ना समझ, इतने आसक्त हैं शरीर के प्रति, तो थोड़ा सा सम्मान में आंच हो गया, क्या नहीं हो गया, बहुत बड़ा घटना हो गया, कितने बड़ा, केवल शरीर के प्रति आसक्त, तो वो खड़ा होकर मुझे एक सम्मान है, बट दैट्स इट। अरे अब गजेंद्र कहते हैं कि आप उनको दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्य, प्राप्य मतलब अप्राप्य मतलब नहीं प्राप्त होते हैं, अप्राप्य करेंगे मिलेंगे नहीं, दुष्प्राप्य मतलब प्रयास करने पर भी नहीं मिलेंगे, दूह लगा के केवल अप्राप्य नहीं, आप खुद कसर लगाओ लेकिन आशा नहीं कि तुझे मिल जाएंगे। लेकिन अप्राप्य करने कभी मिल नहीं सकते, ये बात नहीं कह रहे, नहीं मिल सकते हैं लेकिन बहुत कठिन है, दुष्प्राप्य का ये भी अर्थ होता है, कि ऐसा नहीं कि ना मिलेंगे, मिल तो सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं मिलना, बहुत बहुत कठिन काम है। किन के लिए कठिन काम है ये लंबा लिस्ट दे दिया ना, ये पहला लाइन है, पूरा लिस्ट है किन किन के लिए दुष्प्राप्य है। सबसे पहले बोलते आत्मा, आत्मज, आप्त, वित्त, गृहजन, ये सब एक कैटेगरी। अब आप लोग जितने बैठे हैं कृपा करके सब आप लोगों को अप्लाई कीजिए, हम इस खाता में आते हैं कि नहीं, है ना। गजेंद्र से ऊपर होंगे हम लोग, नहीं वो तो डिग्री में कम होंगे हम और कोई लगा सकते हैं उसमें, है ना। आत्मा, आत्मज, आप्त, गृह, वित्त, जनेशु, इतने सर, ये तो इतना पढ़े इतने में आ सकते, हमारा तो और भी कुछ ज्यादा है ना? इस प्रकार आसक्त पुरुष के लिए प्रभु आप दुष्प्राप्य। क्यों दुष्प्राप्य? क्योंकि आप गुणसंग विवर्जित आए, आप गुण का संग नहीं कर सकते, गुण आपको छू नहीं सकता, गुणातीत है। इस भौतिक संसार के इस सत रज तम ए गुण से परे गुण आपको छू नहीं सकता, और हम लोग उस गुण से सरोवर है, एक मिनट एक इंच से निकले नहीं, फुल टप टू बटम गुण। गीता भगवान कहते ना क्या, गुण संगेशु भुक्ते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति पुरुषस्थो ही, पुरुष प्रकृतिस्थो ही, पुरुष मतलब हम जी प्रकृतिस्थ हो गया, प्रकृति माने तीन गुण वाला, उसी में स्थित हो गया, उसी में डूब गया, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणाम, प्रकृति का गुण उपभोक्ता प्रकृति में फंस करके, वो प्रकृति से मत मैटर नहीं है, उससे परे है लेकिन आके गिरा है उसमें, अब फंस रहा है भोग रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि गंदा पानी बह रहा है, पानी क्यों गंदा हुआ उसका ऊपर जब हम इन्वेस्टिगेशन करें बोलेंगे भाई किसका दोष है, पानी का दोष है ना, मिट्टी का दोष है ना, किसका दोष है क्यों गंदा पानी, हाँ संग का दोष है, किसका संग कौन किया, पानी ने मिट्टी के संग किया, सही बात कहे, ना तो पानी का दोष है ना तो मिट्टी का दोष है, दोष है दोनों मिले क्यों, जब मिले फिर बिछड़े क्यों नहीं, क्योंकि गंदे पानी को अभी फिल्टर करके साफ किया जा सकता है, पॉसिबल ना, पॉसिबल, लेकिन जब तक मिले रहेंगे तब तक हो ही नहीं सकता। तो हमारा दशा वही है, हम इस प्रकृति के वस्तु नहीं है, इससे अलग मैटर है, ये जड़ तत्व है, हम चेतन तत्व है, बिल्कुल अलग है, समुच्चा अलग है, लेकिन हम पुरुष प्रकृतिस्थ हो गया, आकर इसमें गिरा, प्रकृति अब बुलाया नहीं कि आओ मेरे से गिरो, नहीं, हम उसको देखे बोले ये अच्छा है, अब भगवान को विमुख होकर के उनको पीछे छोड़ करके यहां आकर टपके। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि हम फंसने का कारण क्या है, कृष्ण भूली सही जीव भगवान छा करे, कृष्ण को भूल करके हम अपने में थोड़ा सुख भोगने के लिए इच्छा की, कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण को लेकर के करो तो कोई बात है, कृष्ण के साथ तो इतने तो परेशानी नहीं होगा, कृष्ण को भूल करके हम सुख भोगेंगे ये विचार जब मन में आया, वांछा कर मतलब मन में विचार ही किया, अभी किया नहीं, भोग नहीं किया, व्यवस्था सब कर किया नहीं, मन में विचार किया कि मैं करना चाहता हूं मैं करूंगा, जैसे मन में विचार आया अभी एक्शन ही नहीं किया, देखिए कितने खतरनाक है, आपने मन में सोचे भर, सोचे भर तो माया इतने एक्टिव है वो आपके सोच को जान लेती है, आपके विचार अभी प्रकट नहीं किए, हृदय को पढ़ लेती है माया, देखा कि ये तो पटा आप पकड़ लेंगे, देखा कि भाव अंदर से थोड़ा बहुत है, एक बार निकटस्थ मायाचार्य झापटिया धरे ग्रिप में ले लेगी, वो निकट में रहती है, आपको कुछ तंग नहीं करते, निकट में रहती है आपने, लेकिन जैसे देखा कि आपके अंदर कमजोरी है देख लिए, वो एक्सपर्ट होते हैं देखने के लिए, आप कितने छिपाएं आप नहीं, वो छिप नहीं सकता। माया का नजर बड़ा तेज तीक्ष्ण होता है, वो केवल रूप को नहीं, वो सीधा अंदर को देख लेगा, आंख से नजर मिलाएंगे सीधा अंदर पढ़ लेगी क्या है, अब तुरंत ग्रिप में ले लेगी, निकटस्थ माता रे झापटिया धन झपट ले, आप छटपट छटपट होते आप निकल नहीं सकते, एक बार ग्रिप में आ गया फिर नहीं निकल सकते, अब निकल सकते नहीं क्या है ना, ये सब बंध जाएंगे। ऋषभ देव जब अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, बोले बेटे संसार ऐसा कुछ नहीं है, संसार बंधन का, बोले संसार बंधन कुछ नहीं है, बोले कहां से शुरू होता है पिताजी, बोले शुरू होता है यहीं से। क्या श्लोक है, पुंस स्त्रिया एक पुरुष एक स्त्री, जब तक अलग अलग है संसार कहां है, घर द्वार कुछ नहीं, पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव एक दूसरे को देखे, बस देखने मात्र से उनके अंदर भाव पैदा हुआ, तयो उनमें से क्या हुआ, देख मात्र से जो विकार हुआ मन में तब और कुछ बढ़ा, तयो इथर हृदय ग्रंथि में आहु, वही खड़े खड़े अभी पास में नहीं है, वहीं पे गांठ पड़ गया। हम लोग संसार में गांठ पड़े, दोनों चीज आता है सुनाट लगा कर टाइट कर तब गांठ पड़ता है, बोली वो ऐसे पावरफुल गांठ है, दृष्टि से गांठ हो जाता है, दृष्टि मात्र से। पुंस स्त्रिय पुरुष स्त्री को देखे, देखने का कई भाव होता है, यहां ऋषभदेव कहते हैं ये भाव है, गांठ पड़ता है, कौन सा भाव है, मिथुनी भाव, भोग भाव से अगर देख लिए दैट्स इट, वही गांठ पड़ गया नट कटाक से, अब पता नहीं चला, नजर से नजर गांठ पड़ गया, तयो इथु हृदय ग्रंथि में आहु, हृदय में ग्रंथ कंठी पड़ गया गांठ, हृदय ग्रंथि में आहु, फिर अब गांठ का प्रभाव क्या होगा, अब चाहिए गृह वित्त आपता, आप सब लिस्ट याद है, सारे लिखने हैं ये सारे, क्या पहले वो होता है फिर ये सारे आ गए, अब वो हो गए तो फिर कहां, फिर कैसे मिले। एक सत्य घटना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य एक थे, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद थोड़ा चौसठ माला वाले बड़े स्ट्रेस गंभीर देते भजन के, उन्होंने तो उन्होंने करना चाहे कि आकर के गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं तो टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं, क्या करना चाहता ना, मैं तो गंभीर भजन करना चाहता हूं, आप कृपा करें मुझे, मैं ऐसे आश्रम से नहीं रहूंगा, मैं तो अकेले जाकर के पहाड़ की चोटी में भजन करूंगा, बस मैं समझ गया आपके भाव, इस जीवन में तो भक्तिशन गोपाल बोले देखो तेरा स्थिति नहीं है, तू यहां रहो, डिस्कशन करो, ये करो, इस काम करो, मत जा। नहीं 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 गुरुजी, आप मुझे तो, मैं तो कसम खा ले, मुझे तो करना है, मैं तो भजन करके सिद्ध हो जाऊंगा, मैं बस और कुछ नहीं, कृपा करके मुझे आदेश दे दीजिए। अब इतने पीछे पड़ा, बोले नहीं तू कर नहीं सकता, तो क्यों जबर, नहीं बिल्कुल, इतने अड़ गया, अब गुरु जी को झुकना पड़ा उनके सामने, बोले ठीक है बेटा जा, लेकिन ऐसा कर कुछ नहीं तो ये किताब के ले जा साथ में, कभी कभी पढ़ लेना, बाकी तो तू समझ गया, तू जो करेगा जो होने वाला तेरे मुझे दिखाई पड़ता है, तो इतना तो करो, एक पुस्तक एक ले जा, कभी कभी पढ़ लिया ना, आपके संपत्ति आपके दिया हुआ चीज तो मेरे सर में प्रतिदिन उसको स्वाध्याय करूंगा रखूंगा उसको। बोले अगर कर पाओगे तो चलो। चला गया गुरु जी से प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के, जबरदस्ती आशीर्वाद लेकर चला गया। अब चला गया जाकर ओ गांव से देश से दूर कोई पहाड़ जंगल की चोटी में जाकर जाकर के बैठा, कुटिया बना करके रहा, रहकर कोई भजन किया, भाई भूखे भजन होगा या कहां होगा, जब भूख लगा तो बोला अब तो सुना था जोगी जानते सब जाकर मधुकर करी खाते, हम जाएंगे जंगल, तो गांव में आया, पहाड़ से उतर के गांव में आया, गांव में आकर घूम करके मांग लिया जो उसे खाने का वस्तु, जो भी दे दिए लोग, लेकर बैठ कर खाए भजन कर रहा, खाकर भजन कर रहा था, भाई स्नान टान तो करना ही पड़ेगा, पास में झरना नदी था, स्नान टन कर रहा था, कपड़ा सुखा, अब जो लेकर जाए, अब सब काम अपने खुद अकेले ही करना पड़ता है, तो लेकर के बोला डेली डेली गांव में जाऊं आऊं सर 5 किलोमीटर जाना आना बड़ा परेशानी होता है, ऐसा कुछ थोड़ा ज्यादा मांग कर ले आता हूँ रखकर खाऊंगा। हाँ थोड़ा कुछ रोटी पोटी ज्यादा ले आता रख देता था, कल भी खाऊंगा सुबह तक खाऊंगा, 2-3 बार खा लूंगा, जो कौन देखता है कितने बार खाता हूँ, कितना भजन करता हूँ कोई देखने वाला तो है नहीं। हम सोचते हैं कि भजन करते जो करते हम तो अकेला तो हो गए, यहाँ तो आश्रम में कोई देखता था, उठना पड़ेगा मंगा तो जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई नहीं अकेले हम राजा। आप तो सो क्यों खुच कर, कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है। आप खाने की चिंता पड़ा लाख रख दिया, जहां आप जानते हैं खाने का वस्तु रहता है तो कुछ जीवित तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एक तो होते हैं चींटी है ना, उनको कैसे पता चलता पता नहीं, और दूसरे होते चूहा, उनको कैसे पता चलता है खाने की तरफ, चाहे पहाड़ हो चोटी जंगल हो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। अब पहुंच गए, पहुंच करके और अपना बिजनेस की हुआ कर देखा ही वो खा रहे, उसको और कुछ तो है नहीं, तो आपने गामछा निकाल बांध कर रखा, बोले चूहा खा जाए बाहर रखने से, गामछा को लटकाएगा चूहा, गामछा काट गया, कपड़ा काट गया, बोला बड़ा परेशान है, कपड़ा वपड़ा भी काट लिया है, कोई दुकान में जाता है नहीं, नया कपड़ा रहे धन भी नहीं है, कपड़ा जो था उसको काट लिया, भोजन भी खा जाता है, बड़ा परेशानी है। गया गांव में दुखने के लिए, फटा हुआ वस्त्र पहन के बड़े दुखी था, बड़े दुखी था। अब एक घर वाली देखे, बोले बाबा जी क्यों बड़े इतने मुंह लटका कर जा रहे हैं, आप पहले जमाने में आते बड़े अच्छे थे, मांगे थे, आज इतने दुखी क्यों? ना मैया क्या बताऊं बहुत परेशानी, ना बाबा भजन करते हैं छोड़ छाड़ के परेशानी क्या होगा, ना अरे परेशानी कुछ नहीं, चूहा आके दम करके रखा है मेरा, सारे कपड़ा काट गया, भोजन में खा जाता है, बड़े परेशान कर दे। बोला बाबा ये कौन सा बड़ी बात है, चूहा के इतने चूहा की कोई चिंता है ना कोई है? अरे चूहा भटक नहीं सकता आपके पास, आ नहीं सकता ना, कुछ उपाय में यह बताओ ना, बिल्ली बिल्ली रख लो चूहा आ नहीं सकता, बिल्ली जहां रहता है चूहा नहीं आता, ना बिल्ली अभी कहां से ला। अब माता जी के घर में बहुत सारे बिल्ली थे, वो चाहता था उसको लेकर कहीं छोड़ दे, बोला राख मिल गया इधर बोला कितने चाहिए ना, ज्यादा नहीं एक आध होना, लेके जाओ, वो प्याक करके बैग में दे दिया एक बिल्ली, लेके जाओ बिल्ली के ला कर रखा। अब चूहा तो नहीं आया लेकिन बिल्ली परेशान करने लगा, बिल्ली आवाज करते रहा तो आके बताया अच्छा बिल्ली दे दिया, वो तो मुझे बैठने ना, अरे बिल्ली आया तो उसको टेक केयर करना चाहिए ना, क्या टेक करना, दूध बूध पिलाओ ना उसको, दूध कहाँ लो आप, जब मांगने आता है तो दूध ही मांग लिया करो, तो मांग करके थोड़ा दूध लगा बिल्ली के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी दूध मांगना पड़ा उसको, पहले तो मांग करके बिल्ली को दूध पिलाया, हाँ दूध पिलाया क्योंकि चूहा नहीं आएंगे, अब बार बार दूध मांगना पड़ा, बोला ये परेशान है कौन देते नहीं देते, अब डेली दूध नहीं पिलाया तो परेशान करती है बिल्ली, बोला कोई बात नहीं डेली डेली क्यों मांगते है, गाय पाल लिया करो दूध आ जाएगा, आप चाहते तो मैं दिला देते, उनके घर में है ज्यादा गाय है बछड़ा वाली गाय दे देते, आप फिर को टेंशन नहीं, 2 टाइम दूध निकला 1 टाइम आप भी पियो अच्छा से, कभी कभी केवल दूध दहार करके रह जाओ, मांगना भी नहीं पड़े, बिल्ली की दूध दे देना चूहा तो आएगा नहीं, समस्या समाधान। आप ऐसे कर लिया, अब गाय एक ले लिया, लेकर आप भजन क्या करे, आप जानते ना घर में गाय रहने से कितने यूनिट बढ़ जाता है, अकेले केवल अपने शरीर को संभालने के लिए तो कितने समय घंटा जाता है, अगर एक गाय को और रख लिए उनके साथ बछड़ा भी रख लिए, आप जो लोग घर में गाय पाले होंगे बछड़ा के साथ तो जानते होंगे कितना टाइम जाता है वो बेचारा गाय बछड़े बोल तो नहीं सकते, उनके हिसाब से उनको टेक केयर करना पड़ेगा, उसमें लग गया और बेचारा तो और परेशानी हो गया। और चूहा उसका गीता को काट गया था उसका क्या देखें, अब चूहा भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय आ गए, गाय बछड़े, अब तो ऐसे पड़ गया कि अब जा ना सके गांव में, बिल्कुल दूध पी करके बड़े परेशान हो गए। एक दिन आया बोला बड़े परेशान क्या है, इतने गाय भी देखना है, टेंशन है गाय का भी, बछड़ा किधर रखें, ये करे वो करे, बहुत स्थिति में आ गए। तो अब मिला बोले आपने, बोले इसमें क्या है, सारे समस्या समाधान कर देंगे, भजन करना चाहते ना निर्द्वंद भजन करो बैठ करके टाइम टू टाइम, ना क्या ना शादी कर लो, तैयार है लड़की तैयार है शादी करा देते हैं, सारे काम देख लेगी आपके गाय बछड़े को, चूहा बिल्ली घर साफ करना, आपका कपड़ा साफ करना, खाना बना कर दे देगी, सब कुछ कर देगी, आपको जो काम ही नहीं बैठ के दिन भजन करो गीता पढ़ो सही है ना, और क्या सारे यही से सारे समस्या, सारे समस्या समाधान, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। राजी हो गए, राजी हो गए तो घर शादी कर लिए, शादी करके घर में ले आए, वो पहले कुछ दिन तो करेगी काम, अब उसको आप धीरे धीरे आप भाई बढ़ने लगे, संसार बढ़ने लगे भाई, उनके लिए तो फिर व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके लिए तो व्यवस्था ढंग से करना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता खान पान व्यवस्था। आप जब परिवार बढ़ गए, अभी इतने फंस गया आप, तो गाय के देखें तो वो देखेंगे उनको काम करना पड़ा, आकर आप पहाड़ में नहीं रह सके, आप नीचे आकर कुछ तो मजदूरी करना पड़े, कुछ काम करना पड़े, लेकर के जाए वो गीता भाड़ में जाए कटा फटा कोई पड़ा है, देख ही नहीं सका साल भर तक, तो अभी सारे काम करने लेकर के ओवर टाइम करना पड़े, करके चलाना पड़े। अब पहले तो वो सेवा करने के लिए आई थी, सारे समय आपका है, मैं तो सब सेवा कर दूंगी, सारे भजन करना, अब भजन के भजन करने के लिए टाइम नहीं, अब ऊपर से डांट अब बेचारे परेशान होकर के। तो एक दिन कई साल के बाद गुरुजी ने बोले चलो, बोला था मैं सुना हूं कि यहां पहाड़ में वो बैठ के भजन करता थोड़ा जाते हैं, तो एक बार गुरुजी ने पहुंचे, आप देखे उनका नाम लेकर पुकार, गुरुजी आए, दौड़ करके गया जाके प्रणाम करने, प्रणाम करने के लिए बाकी लोग तो पहचान देने थे, अब तीन हो गए थे लड़के लड़के, बोले सर प्रणाम करो गुरु जी, पत्नी को ले सर प्रणाम करो, गुरु जी बोलते हैं अरे ये सब कौन है भाई, तू तो निर्जन भजन करने के लिए आया था, मैं तुझे गीता दिया था निर्जन भजन करने के लिए, एकांत इसी शरीर में चले जाए निर्जन भजन करके, फिर ये सब आड़ कैसे हो गए, निर्जन भजन के फल ना गुरु जी, ये सब आपके ही दास दासी, गुरु जी आपके सब, आपके ही सब हैं दास दासी, वो देख रहे हैं कौन है, ये देखते हैं कौन है, लेकिन बोलते सब आपके ही, सब आपके दास दासी हैं गुरु जी आपके ना, कैसे ये कौन कैसे मेरे दास दास ना, गुरु जी आप जो गीता दिए थे ना, ये गीता के संसार है सर, मैं तो नहीं ला रहा था, आपने दिए तो आपके संपत्ति को संभालते संभालते संसार पड़ेगा, बोले कैसे मेरे गीता को संभालने, गीता से क्या हो गया ना, गीता को मैं रखा था चूहा काटा, चूहा के लिए बिल्ली लाया, अब बिल्ली के लिए गाय लाए, और गाय के लिए ये लाए देवी जी आए, अब उनसे ये सारे, अब सारे आपके गीता के लिए है गुरु जी तो गीता पाठ के संसार, तो इसी प्रकार जो आसक्त हो जाए तो कैसे निकल सकते, दुष्प्रापणाय नहीं हो सकता, दुष्प्राप्य है, तो इसलिए ये गजेंद्र कहता है, गजेंद्र बड़ा भारी परिवार था, छूट गया तभी वो समझ रहा है कि किस प्रकार, ये कह करके बोलते फिर आप किसको प्राप्त होंगे, इन लोगों को तो नहीं मिलेंगे, हम लोग का तो गया पॉइंट, मुक्तात्मा भी सहृदय परिभाविताय, बोलते जो मुक्तात्मा है सबसे जो मुक्त हो गए सारे संसार के अटैचमेंट से, ना किसी के बेटा है ना बेटी है ना घर है ना आपदा परिजन घर मकान कुछ है ही नहीं, ये सबसे छोड़कर जो मुक्तात्म भी हो गए उनके हृदय में परिभाग था, उनको ऐसे नहीं मिलते, वो जब भजन करेंगे बोले मुक्त को छोड़ देने से घर भगवान नहीं मिल जाएंगे, बोलते हैं मुक्तात्मा भी मुक्त जनों के लिए क्या होगा, इनके हृदय में अगर वो लोग भजन करेंगे आपके साथ सहृदय हृदय के साथ भजन करेंगे तो उनके हृदय में भावित होंगे परिभाविताय, उनके हृदय में आपको भाव कर पाएंगे परिभाविता मुक्तात्मा के, क्यों, क्योंकि आप ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, आप तो ज्ञान धन है तो आप स्वयं भगवान है, इसलिए मैं आप प्रणाम करता हूं, बाकी ये स्थिति में तो हम कोई पा नहीं सकता जब तक। तो ये संसार में हम देखते हैं प्राय, संसार का मतलब बताए सब आसक्त है, वो आसक्ति के कारण बोले क्यों नहीं पा सकते हैं, बोले आसक्ति के कारण हमारा मन में अभिमान होता है, इसी कारण से नहीं पा सकते हैं। आप कभी कभी भगवान के नाम एक सुने हैं कि नाम सुनना दीन बंधु, ये भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम कोई धनी बंधु सुने है ना, नमो अकिंचन वित्ताय, जिनका जो अकिंचन है उनके लिए हुए और जो बाकी बड़े हैं लोग उनके लिए ना, उनके लिए नहीं। भगवान को भगवान का होने के लिए आपको दीनहीन अकिंचन होना पड़ेगा, नहीं तो भगवान साथ नहीं देते, वो तो उन लोग का है, उन लोग का नहीं। अकिंचन मतलब क्या है? दीन अकिंचन मतलब किसको कहते हैं दीन अकिंचन? कोई अपना को बोल दे मैं दीन हूं, बस हो गए दिन, किसी दिन होंगे अकिंचन किसे होंगे? भाई भगवान मिल जाते हैं दीन अकिंचन होने से, दीन अकिंचन हम होना चाहते हैं कैसे बन जाएंगे? कोई तरीका है बन जाने का? आपका नाम तो पीछे लेके दे दीन अकिंचन करके हो जाएगा, आगे पीछे फिर कैसे बन जाएगा? क्या करना पड़ेगा? शरणागति करना पड़ेगा, शरणागति करना पड़ेगा। शरणागति जब तक दीन नहीं होंगे तो शरणागति हो ही नहीं सकता, शरणागति का एक अंग है दीन, हमें इसी को पूछना वो कैसे होंगे। शरण कौन लेता? आपके पास है धन संपत्ति कार है, आप किसी लुट मांगे हेल्प मांगेंगे? क्यों, मेरा है ना, शरण तो मांगेंगे जिसके पास है नहीं दीन बिचार, प्लीज हेल्प मी, क्या नहीं भेज तो वो शरण मांगेंगे, नहीं तो शरणागति हो ही नहीं सकता भाई, है ना। निडी लोग का तो होगा, हम लोग बस तो है तो हम क्यों चाहते हैं आप घात बताएं, शरण क्यों लेंगे? आप हमारा शरण ले लो, हम क्यों होंगे शरण लें? इतने अहंकार होता है बड़े लोगों का, वो तो कहते हैं कि तुम्हारा भगवान हम क्यों, तुम्हारा भगवान हमारे पास आते हैं, हमारे टेंशन लेने हमारे घर में आते हैं, हम जाते क्या भगवान, हर कोई चीजें हमारे घर में आते हैं। अपने को दास समझना, करेक्ट। अकिंचन का अर्थ है दीन अकिंचन, मतलब इस संसार में, इस दुनिया में, इस शरीर में, हमारा घर में, परिवार में, हमारा किंचित कहने के लिए कुछ नहीं है, किंचित मात्र हमारा कुछ नहीं है, तो ऐसे संभव है? ऐसे किसे बोल सकता हूं कुछ नहीं करे? हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता, तुम्हारा किंचित बोल के कुछ नहीं ना, नहीं। अरे दुनिया भर का बैंक बैलेंस लेकर बैठा है, घर बाड़ी कोठी सब रखा है, आप बोलेंगे अमरीश महाराज का नाम सुने, कितने बड़े भक्त थे, सम्राट थे सम्राट, वो कैसे भगवान वो कैसे अकिंचन हो गए? भाई उनके साथ उनके रानी थे, महल था, कोठी बाड़ी, राज्य था, पूरा सम्राट थे, वो कैसे अकिंचन हो सकते? विकारी थोड़ी थे, राजा था, जुष्टी महाराज राजा थे, परीक्षा महाराज राजा थे, वो अकिंचन थोड़ी थे, फिर भगवान कैसे बने उनको? लेकिन सचमुच अकिंचन थे, क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी उनका था अपने शरीर तक भी अपना नहीं मानते थे, किसको मानते थे? हरि का, जो कुछ मेरा है कुछ मेरा कुछ नहीं, मेरे कहने के लिए कुछ नहीं, सब उनका है, मेरे पास सब, लेकिन वो मेरा नहीं है, किसका है? उनका है, बस एक मिनट में अकिंचन हो गए। आपका नाम काट दो, उनके नाम दलील कर दो, ओनरशिप उनको दे दो, टाइटल ओनर टाइटलशिप उनको दे दो, आपका पास मत रखो, बस हो गया अकिंचन, कुछ नहीं है, ये सब किसका ना, उनका है, मैं यूज करता हूं सब उनका है, मेरा क्या, मेरा कुछ है नहीं। ठीक इसी प्रकार जो सब कुछ जिसका कुछ भी है सब भगवान का मान ले, वो अकिंचन हो सकता है। इसी स्थिति में, ये स्थिति कब आएगा देखो, गजेंद्र अभी मानते हैं, जब आपने अभिमान शंकर था, अब बोलते हैं कि आप हमको नहीं मिलते हैं, आप गुण से परे हैं, आप सब कुछ जो था सब आपका मानता हूं, नम ईश्वराय, आप ईश्वर है, आप भगवान है, आप ज्ञान घने, तो सब कुछ आपका, मैं हुड़बक अभी तक बोल रहा था मेरा मेरा, अब नहीं करता हूं, सब आपका, इसलिए प्रणाम करता सब आप, सब आपका। जब सब हम भगवान का मानेंगे तो अपना अभिमान, अपना अहंकार नहीं रहेगा। वो जो अहंकार रहेगा वो कौन सा अहंकार रहेगा? कि मैं भी भगवान का हूं, हमारा जो आईडी रहेगा, आईडी प्रूफ क्या होगा? दासो अहम, मैं भगवान के दास हूं, सब कुछ उनका है, मैं उनके काम करने लायक नौकर हूं उनका, ये भावना, ये सत्य अहंकार है, उसको छोड़ने से मिथ्या अहंकार होता है। तो इस अभिमान में कोई रहे तो फिर आपने को थोड़ी सोचेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं मुझे ये हो रहा है, तो नहीं, तो उनका ये समझ होगा कि मुझे लगाएगा काम, कि मालिक वो है, सब कुछ उनका है, शरीर धन रत्न जो भी कुछ आसपास सब उनका है, तो उन्होंने मुझे काम में लगाया है, मालिक ने जिसमें लगाया है, तो वही जाने काम खराब हो अच्छा होगा, वही जाने मुझे काम खराब हो तो मुझे कोई निकाल लेगा, दूसरे काम में लगाएगा। अगर मैं काम के लिए योग्य नहीं हूं, उनके जो चाहते हैं इसे नहीं कर पा रहा हूं, तो उन्हें स्वयं मुझे चेंज कर देंगे। यह भावना होना चाहिए ना, ये भावना ना हो करके अगर ये भावना होगा कि मैं कर रहा हूं, अब कुछ बोले तो मैं छोड़ दूंगा, है ना, नहीं हम कभी कभी इसे करते हैं, आप लोग भावते हैं समझ कर दास करके, लेकिन कुछ तकलीफ होने से मैं छोड़ देता था। अरे तू कौन छोड़ने वाला, पकड़ाने वाला तू है, छोड़ने वाला तू कौन, ये भी गड़बड़ी। हम कभी कभी उसे छोड़ देते हैं, नहीं ये भी गलत है ना, आप तो आपका नहीं, आप तो उनका है, तू किसे छोड़ सकते, तुम तेरा नहीं है। सनातन गोस्वामी बोले ये शरीर गल गया, इतने सारे कंडू लासी बह रहा है शरीर, इतने दुख दुर्गंध हो रहा है शरीर, बिल्कुल सड़ गया, घाव हो गया, इस शरीर में कैसे जाऊं ठाकुर जी को दर्शन करूं, उनके सामने करूं, बेटर ये सड़ा हुआ शरीर नालायक शरीर मर जाना चाहिए, वो कहां मरो, बेटर एक अच्छा चांस है पूरी में जाऊंगा जगन्नाथ की रथ के नीचे सुसाइड कर लूंगा, मन में डिसाइड किया। अंतर जाएंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु जान ली, बोले सनातन अकडांटे, बोले अगर आत्महत्या करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाता इतने आसान है, तब तो मैं दिन में कई बार कर लेता, इसमें क्या है, बड़ी आसान बात है, ये मूर्खता मत करो। आत्मा छोड़ने से आत्महत्या से कृष्ण नहीं प्राप्त होते हैं, कृष्ण प्राप्त होते हैं भजन से, इसमें नहीं होते। अगर आत्महत्या करें क्या होगा, ना भूत प्रेत मरेगा, और ज्यादा पुण्य मिलेगा तुझे, और ज्यादा पकड़ में आएगा, तो इसलिए दुर्गति दुर्गति मत करो। आप अपना नहीं है, तू कैसे अपना संपत्ति के ऊपर पराया संपत्ति पर अपना करना चाहता है, तेरे शरीर तो मेरा है ना। हरिदास ठाकुर बोले क्या, भगवान स्वयं बोलते हैं सनातन को कि तेरा शरीर मेरा है, बोलते इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत कुछ काम करवाना है, तुम उसको मिटवाना चाहते, मरवाना चाहते। हरिदास ठाकुर तो कृतकृत हो, बोले हे सनातन आप कितने महाभाग्यशाली है, भगवान स्वयं डिमांड करते हैं कि तेरा शरीर मेरा प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा मैं काम कराऊंगा, कितने हो भाग्य सनातन जी आपका है। तो जो भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान कहेंगे कि तू मेरे दे दिया, तू मन शरीर तो मेरा है, तो उनको कैसे मारना चाहता, यहां से यहां हटाना चाहते, मन मानी फिर क्यों नहीं, जहां तुझे रखा गया कष्ट हो दुख हो नहीं हो सक्सेस हो अनसक्सेस हो पड़े रहो, तो करने वाले मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तुझे उठाकर यहां रख दूंगा, यहां ना कि वहां करूंगा, हम तो बैठ रहा हूं, हम फिर सोचते मतलब छिपे हुए अहंकार भरा पड़ा है, इसलिए तो हम कहते हैं कि नहीं मैं सही कर दूंगा, ये भी एक बड़े अहंकार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब तक अहंकार साथ में रहेगा तब मान लो कभी भी ये जितने सब कहने का सारे अहंकार के द्योतक है, तभी तक भी नहीं हो सकता, भगवान को नहीं सकता। आप लोग शायद वृंदावन तो बहुत गए होंगे, दिल्ली के हैं, वृंदावन में एक प्राचीन मंदिर है, कई मंदिर है वृंदावन में, एक प्राचीन मंदिर है आप लोग शायद कई देखे होंगे, जिसका नाम है लाला बाबू मंदिर, देखे कोई देखे ना, देखा कभी, जाने से लोही बाजार से थोड़े आगे इस तरफ जाएंगे तो पड़ता है, तो लाला बाबू मंदिर बड़े प्राचीन बड़े मंदिर है, उसके पीछे कहानी हो, लाला बाबू व्यक्ति थे, लाला जी थे, उन्होंने जो मंदिर बनाया थे बंगाल के थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बंगाल के बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन परोपकारी बड़े महात्मा पुरुष थे, उन्होंने भगत थे, तो उनके गुरु जी वृंदावन में रहते थे, बड़े त्यागी महात्मा थे, तो बहुत बड़े जमींदार थे। अब जानते हैं जमींदार जिसके पास धन संपत्ति होता है उनका तो कोर्ट कचहरी का काम होता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा है, अपना अहंग रहने से तो कहीं भिड़ जाएगा रास्ता में घाटे में, कोई डांट लगे केस हो गया, देखते देखते 10-20 केस हो जाएगा, अहंकार है उसको तो दिल्ली केस होने लगेगा, ईगो हट है तुरंत। अब जो संपत्ति है स्वभाव है उनका तो ईगो तो बिल्कुल बड़े पूरे फल फूले रहता है, हमेशा किसके साथ भिड़ जाते हैं, छोटे मोटे तो बेचारे गिर जाएंगे, लेकिन जो उनके जैसा ही है वो थोड़ी छोड़ेंगे, अरे एक लाला है दूसरे लाला तो कुछ कम नहीं है, और भी लाला भरे पड़े संसार में, दूसरे बड़े बड़े जमींदार एक से एक पड़े हैं, तो एक जमींदार के साथ उनका डंट गए, वही बंगल में, और वो उनका वो जमींदारी, वही जमींदारी थे, वो बेचारे बाकी कारोबार छोड़ करके उनके साथ नंट जाते हैं। ये भी होता है, धनी लोगों का मानी लोगों का ना, मान के टक्कर सबसे बड़ा होता है, जान जाए लेकिन मान ना जाए, लग जाए। और केस पर केस हाईकोर्ट में तो 40 नंबर के केस चल रहा था नगर तक, हर दिन में दो बार दो डेट लग जाए ऐसे रगड़ करके। 40-50 साल से बूढ़े हो गए, तब से जवानी से केस चल रहा था पूरे, जो वो भी जमींदार है बड़े, वो भी जमींदार है, एक दूसरे को तो देख नहीं, एक दूसरे का नहीं, उनका बेटा उनका नौकर तक ड्राइवर तक भी नहीं देख सकता, उनको देखने से बोला तू हमारे अपोजिट पार्टी के ड्राइवर है, इससे विरोधी बात। अब थे आप करते करते 40-50 साल केस लड़ते लड़ते लड़ते, वो भी लगाता है, वो भी लगाता है, वकील कोई होता नहीं डिसीजन, वो कोर्ट के ऊपर कोर्ट हाईकोर्ट तक पहुंच गए, इतने विरोधी भाव हो चुका था तगड़ा। तो अंत में कभी कभी आते थे, एक बार आए थे वृंदावन में लाला जी, आ करके प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, बोले परोपकार करेंगे, बोले मंदिर बनाऊंगा, जो मूड होता है राजा की तरह संपत्ति होता है। पहले जमाने तो राजा भी उस जमींदार से कर्ज धार लेते थे, राजा से भी ज्यादा संपत्तिवान होते थे वो लोग, वर्धमान के राजा ने उस जमींदार से पैसा धार लिया था, कर्ज में लिया था, इतने धन होता था उनके पास। तो उन्होंने आके बोला मंदिर बनाऊंगा, और बनाए, सनक है उनका पैसा, धन की कमी नहीं, बना विशाल मंदिर बनाया, विग्रह देख लिया, मंदिर बनाया, बस अपन के लिए बोले गुरु जी यहां रहते हैं, गुरु जी को बुलाया, गुरु जी बड़े त्यागी विरक्ति महात्मा थे, भजन आनंदी उनको बुलाया, बोले गुरु जी ऐसे के आपके द्वारा प्रतिष्ठा होगा, गुरु जी बोले प्रतिष्ठा मैं करूंगा ठीक है, लेकिन तू प्रतिष्ठा करने के लायक जो हो जाएगा तभी करूंगा, इतना लायक मैं मंदिर तो मंदिर में नहीं जाऊंगा। हाँ गुरु जी डांट दिए, बोले गुरु जी क्या करूं कुछ बताए, बोले नहीं तू भजन भजन नहीं करता, लड़ाई झगड़ा इसे में होंगे, तो हम तेरे साथ हट। बोले नहीं नहीं अब तो वृंदावन आकर के सालों भर से पड़ा हूं, मंदिर बना लिया, काम चल गया, अब हो गया कंप्लीट, आप प्लीज करेंगे, अब क्या करूं बताइए क्या करूं, मंदिर बना लिया प्रतिष्ठा तो करवाना है बताइए। गुरु जी बोले ठीक है करना चाहते हैं, मेरे सुना तो मैं जो बोलूंगा सो करूंगा, करोगा ना? हाँ बिल्कुल करूंगा, पैर पकड़ के रोने लगा, जो बोलेंगे सो करूंगा। बोले ठीक है मैं आता हूं कल तैयार हो जा। तो कोठी के पास आ गए, अब वो जो मंदिर बनाने लगे तो उनके जो अपोजिट पार्टी वो भी थोड़ा छोड़ गया, उनका मान तो कंपटीशन, वो भी आकर बैठे, विशाल कोठी वो भी बना, उनके कोठी के बराबर सामने वो बैठे, उनका भी पैसे कमी नहीं था, हर टक्कर की टक्कर है, आओ बैठे मैंने। तो वो उनके गुरुजी ने लाला जी को बोले तुम ऐसा करो, जब तुम करना चाहता है तो सचमुच तो आपको एक महीना तक मुझे भिक्षा मांगकर लग देना पड़ेगा, जो भिक्षा आना उसी को खाना पड़ेगा, मेरे पास लड़ी पड़ो मैं बैठता हूं। हाँ गुरु जी ये नहीं हो गए टू मच, बोले नहीं हो कंडीशन हुई, बेचारे इससे अकड़ करके नियम रखे, तो बोले ठीक है मैं क्या मांग लेके जाना पड़ा, तो आपने सोने की जड़ीदार कुर्ता, सोने की बटन कलर उसको हमेशा पहनते थे, उसको पहन करके निकले, अब भाई निकले कोई भिक्षा मांगने के लिए वो मांग भी नहीं सकते, इतने अभिमान इतने मान किसको मांगे, ये दुकान बाजार में खरीद सकता उनको, उनसे मांगूंगा, पूरा मार्केट खरीद सकता उनको, उनको मांगूंगा कौन है। अब गुरु जी ने अड़ करके बड़े आते थे खाली हुआ, तो गुरु जी हुआ नहीं कुछ, गुरु जी बोले आज से तुम्हारा घर में खाना बंद होना चाहिए, अब 10 दिन बीत गया, तू जो भिक्षा से लाएगा वही खाएगा, गड़बड़ हो गया, नहीं तो खा नहीं सकता, मैं देखता हूं। आप गए सुबह से कोई चौराहे पे इधर खड़े रहे, मांगना नहीं बनता मुंह से नहीं आता, आप आए बोले कुछ नहीं मिला आज, बोले फास्टिंग, पहले दिन फास्टिंग किए, दूसरे दिन भी गए, वो दो दिन फास्टिंग हो जाने के बाद तो फिर तो सारे शर्म गया, तो मुंह खुलेगा भाई, तो पेट पे हाल खराब है, तो जाकर मांगने लगे कुछ लोग, वो मुंह खुले मांगे तो लोग तो धीरे लगे, लाला जी आप चाहिए क्या चाहिए, तो फट से आ गया। तो गुरु जी ने बोले ये इसे नहीं काम चलेगा, तो क्या करता है, मांगना तो हो गया ना, मांग लेता हूं अभी, मांगने से लोग देते हैं, देते हैं अभी, बोले लेकिन ये काम नहीं करता, तुझे और डोज चाहिए ना क्या, तू मांगने के लिए इसे लोगों से इधर दूसरे लोग जो परिचित है उनको मांगने से तो लाके दे देंगे, सर 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 आपसे तो अभी 10 रुपया दूंगा तो आपसे 1000 मिल सकता है, सर लीजिए 10 रुपया अभी मांगने आए। बोले यही मांगना नहीं चलेगा, तुझे अगर भिक्षा मांगना है उन्हीं का घर में जाना पड़ेगा जो आपने चीर शत्रु है, वही कुटी में जा, उनसे मांगकर जाओ, जब देखाओ खाओ तब जाकर जाओ। वो कैसे हो सकता है, उनके घर में कैसे मांगने के लिए। बोले तब ना भाई, अगर तुम मेरा बात मानोगे तो उन्हीं का घर से मांग के लाना पड़ा। आप देखा प्रैक्टिस करते करते 20 दिन निकल गया, लेकिन कभी होता ना उनका घर कैसे जाए, 50 साल से नजर मिला उनके घर तो देखना नहीं, उनको वो नहीं, उनके पूरे लाइन परिवार चौकीदार तक भी उनके साथ विरोधी है, एक दूसरे को अच्छे तरह से, उनका तक जाएगा भीख मांगने के लिए। लेकिन गुरु जी ने बिल्कुल नछोड़ बना करके टाइट कर दिया। तो बोला सुबह सुबह निकला, बोला कोई ना देखे, जैसे शर्म फिर भी रहता। बहुत जल्दी सुबह उठ करके कोई नहीं उठे, और बिल्कुल सिविल ड्रेस में अपना वस्त्र पत्र निकाल करके बिल्कुल एक भिखारी की तरह वस्त्र पहन करके गया। बोला और भाकी तक चल जाएगा, उनका घर में जाके देखता हूँ। सूर्योदय से पहले उनके घर में जाता, भोर भोर में जाकर उनके गेट पर खड़ा हुआ। उनके बड़े बड़े लोगों का चौकीदार भी सोते हैं, बड़े लोग भी सोते हैं, उनके चौकीदार भी सोते हैं, क्योंकि तो 9-10 बजे उठने वाले हैं, रात के लेट में सोते हैं। तो जा करके वहां बेल बजाया, चौकीदार उठा, चौकीदार अच्छा तरह जानते, बोला अरे ये लाला जी सुबह सुबह इधर कैसे, उनका तो आम ये कैसे इधर है, स्वयं लाला जी अकेले, उनके साथ भाई गणमान ये फोर्स कितने नौकर वाकर चलते हैं पलटन, अकेले सुबह सुबह कैसे आ गए, वो तो बड़े आश्चर्य आप क्या है लाला जी का, साहब है उनको बताए, सेठ जी को बताया कि मैं आया इसलिए भिक्षा लेने के लिए, वो तो विश्वास ही नहीं किया। हो जाकर अपने हर तटिक बोला, वो बोला, उन बोल करके बताया। सुबह से वो जाकर लाला जी को उठाए, सेठ जी को बोले वो आए हैं, खड़े हैं, वो आए सब सच में। मैं क्या बताऊं, फोटो कैमरा होता तो फोटो लग देखा जाता, लेकिन है वही नहीं, आए मैं नहीं जानता हूं, ड्रेस चेंज करने से मैं जानता हूं कि हम कई साल का रिश्ता है, इतने साल से हमारा ऐसे है, हम नहीं जानते। सही में बंधु को जितने परिचय नहीं पहचानेंगे, शत्रु को कई गुना ज्यादा अच्छा से पहचान लेंगे, ये तो बड़े संबंध होते शत्रुओं के साथ। तो शत्रु को हम नहीं पहचानते, बाल बाल तक पहचानते। आप वो शत्रु का नाम सुन करके सचमुच जो आए फाटक पर गेट पर खड़े हैं, भिखारी बनकर खड़े हैं, ये पकड़ करके भिक्षा पात्र पकड़ कर खड़े, हमको तो समझ नहीं आया। और ये चंद्र भवन से उतर के नीचे आए सेठ जी, आप भोरे भोरे आकर देखे, देख करके तो बिल्कुल समझ रहे, तो वही खड़ी है सचमुच। ऐसे आए पहले तो एकदम रुके, बोले क्या कुछ गले में मारेगा तो नहीं, छुरी पुरी कोई राइफल की छुरा तो नहीं हो, क्यों क्या हो सकता, जो हमारा 40-50 साल से एक दूसरे बड़े कड़क शत्रुता है, कितने नंबर के केस 50 केस चल रहा है हाईकोर्ट में, वो आया मेरे सामने, भी कुछ रहस्य कुछ तो षड्यंत्र होगा, कई बार पता लगाया लेकिन बिल्कुल गमछा सिविल कुछ है नहीं उनके पास, कई ऐसे साथ में उन्हें पलटन के साथ आया, बोला कुछ हो तो अटैक करें कुछ करें, वो तो अकेले थे। आकर सचमुच पूछा, जैसे सामने आया वो लाला जी को उनको सामने देख करके बोलने नहीं बनता, तो बोले कैसे बोलू, मेरे चीर शत्रु है, उनके साथ कितने रगड़ करके मैंने किया हूं, अभी उनको मैंने कैसे बोलूंगा, मैं भीख मांग चाहता हूं आपसे, लेकिन अब खाना पीना कई दिन सुकान दे, एक महीना से तो उनका हालत खराब हो चुका है, इतना हाइड्रोज गया है, तो पूरे कसर लगा करके पूरी लाल स्थान को एक साइड में निपट करके प्रयास करके बोला, लाला जी आपसे मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, मैं आपके घर में भिखारी होकर आया। कहते ही तुरंत रो पड़ा, संभाल नहीं पाया आपने आपने से कहा, अपने ब्रस्ट इंटू टीयर, सब रुका नहीं पाया अपने आप को, कितने दिन का स्टॉक था अभिमान मान सारे निकला पिघल करके, केवल उनके सामने खड़ा होकर बोल दिया, मैं आपके सामने भिखारी हूं, मुझे कुछ भीख दीजिए। ये बात कहे 50 साल का इतने बड़े अहंग अभिमान, ये बात निकल नहीं सकता, लेकिन गुरु जी का डोज इतना हावी था, बोला साइड में, बोल दिया तो अंदर घोर पीट करके आंसू निकला धराधर, रो पड़ा अकबर, बोला कि मैं भिखारी, और उसको देख करके उसकी क्रिया मुद्रा को, वो सामने जो विपक्षी सेठ था उनका भी हाल गोल, वो भी जीरो पॉइंट में आ गए, वो भी बिल्कुल रोने लगे, बोले क्या तू तो सचमुच में देखे कि कपट नहीं है, और जिस प्रकार बोल रहा है रो करके उसके अंदर कपट नहीं है, अभी कोई मान नहीं है, सचमुच भी क्या भिखारी बनकर आया, भी क्या चाहता है। तो भी एक मिनट में एक वाक्य में बोन्ड आउट हो गए, वो भी रो पड़े। रो करके आगे आए, दो एक दूसरे में चरण में पड़े, एक दूसरे को पकड़े, आलिंगन करके गिरे, घंटों तक रो पड़े। सारे नौकर वाकर सब देख के तड़प हो क्या गया उनका। अब आधे घंटे में उठे, भिक्षा क्या लेंगे? वो तो बोले तू मेरे घर में सोना है, ये घर तेरा ही, तू ही ले जा, तू ही ले जा सब, भिक्षा क्या चाहिए, सब कुछ ले जा। नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं तो भिक्षा लेके जाऊंगा। एक से इस मान अभिमान में आधा घंटा में इस प्रकार के मिलन हुआ दोनों का। इस प्रकार कई वर्षों का पाला पोसा मान अभिमान इससे मिट करके धूल करके पानी होकर निकल गया। अब 10 बजे वकील बुलाए, सारे केस रफा दफा खत्म। अब आए बोले अब प्रतिष्ठा करेंगे तेरा मंदिर, ये है तरीका। लेकिन हम उसको पाल के रखेंगे, भगवान थोड़ी आएंगे, ये निकालने तो कैसे निकाले, है ना। तो इसको कहते हैं मुक्तात्मा भी सहृदय परिभाविताय। ये मुक्त किससे मुक्त? यही अभिमान से मुक्त होना चाहिए जो पाल को उसके रखे कई दिन से, उसको एक बार निकाल देता है हृदय में से परिभावित आ जाए, भावित हो जाते हैं भगवान, यस अब निर्मल हृदय में आ गया। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्नंति दिव्य स्तवे वेदे साम पद क्रमपनिषदेर गायंती जंग सामगा ध्यानावस्थित तदगत न मनसा पश्यंती जंग जोगिनः जस्यांतः विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मे नमः। उन देव को प्रणाम करता हूं जो जोगी जन के हृदय में प्रकट होते हैं। अब जोगी नहीं बनना पड़ेगा, केवल मुक्त होना पड़ेगा अभिमान से। मुक्त हो जा भगवान प्रकट हो जाए, है ना। लेकिन हम ये प्रक्रिया नहीं कर पाते। हरे कृष्ण।